आप सुन रहे हैं प्रतिनिधि कहानियां बाय इस्मत चुगताई, मेरी यानी सुरभि की आवाज में। और आज की कहानी है फिरदौस।
अब तो बस एक ही रास्ता रह गया है, खुदकुशी। वह सिसकियां भरकर बेहाल हो गया। मैं खामोश रही। अब नहीं सहा जाता, मैं फिर भी खामोश रही। ऐ आपा, मेरी जान पर बनी हुई है और तुम हो कि बस।
अरे भाई, तो मैं क्या करूं? मेरे पास तो फ्रूट साल्ट से ज्यादा खतरनाक दवा भी नहीं।
अल्लाह, तुम्हें मजाक सूझ रहा है और यहाँ जान पर बनी है।
जान पर बनी है तो फिर क्यों परेशान होती हो? अल्लाह ने चाहा तो मौत खुद ही आ जाएगी। वैसे खुदकुशी हराम भी है। यूं मरोगी तो सीधी जन्नत में जाओगी, कि शौहर पर जान छिड़कने वाली बीवियां जन्नती होती हैं।
सच कहती हूँ,
वह हराम ज्यादा एक दिन मेरी जान लेकर छोड़ेगा। फिर तो तुम्हें जन्नत में जमुर्रत का महल मिलेगा। शौहर यानी खुदाए मजाजी की बख्शी हुई मौत तो ऐन शहादत के रुतबे पर पहुंचा देगी। उन्हें हंसी आ गई। धुआंधार बारिश में सूरज जगमगा उठा। सलीमा खातून दो बच्चों की माँ, बला की जामा जेब और कमसिन लगती थी। शौहर नामुराद आए दिन शराब पीकर ठुकाई करते। सास सगी खाला थी, पर निरी सिरके की बोतल धरी थी। कमसिनी में बेवा हो गई और इकलौते बेटे की चाहत में जवानी फूंक दी। भली बीवियां उनके आंचल पर नमाज पढ़ती थी, मिलाद शरीफ किस सोच से पढ़ती थी। तकसीम के वक्त यह बूढ़ी नानी को छोड़कर ना जा सकी कि उन्होंने माँ के बाद पाला पोसा। शुरू ही से सलीमा को आंख के तारे इकलौते वाहिद खां के लिए मांग लिया था। बूढ़ी नानी को बेटा बेटी नए मुल्क में कहाँ ढोते फिरते। पुराने आबाई मकान में से होते हुए सब चले गए। खुदा जाने क्या घपला हुआ कि बुढ़िया को एक खस्ता मकान में नकारा सामान के साथ छोड़ गए। रिश्ते में वाहिद खां सलीमा के मामू लगते थे। 7-8 बरस बड़े होंगे। अब मुझे ज्यादा तफसील तो याद नहीं, निहायत गैर दिलचस्प तफसील होगी। लखनऊ में सलीमा ने FA तक तालीम पाई और फिर वाहिद खां BA के बाद किसी फर्म से बंबई में जुड़ गए और शादी करके माँ समेत आ गए। दो बच्चे हुए। सलीमा ने ट्रेनिंग लेकर म्यूनिसिपल स्कूल में नौकरी कर ली। वाहिद की आमदनी अच्छी थी। दो बच्चे, टूटी फूटी दादी क्या संभाल पाती। सलीमा से मेरी मुलाकात एक स्कूल के जलसे में हुई थी। बड़ी अदब नवाज थी, काफी मुशायरों से मिलना हो जाता। वह मोहम्मद अली रोड पर रहती थी। कभी उधर जाना होता तो मैं थकान उतारने उसके यहाँ चली जाती, और कभी मेरे ड्राइव पर चाय का प्रोग्राम बनता तो वह मेरे पास भी आ जाती। मगर उसके शौहर कुछ खिंचे से रहते। नौकरी कभी किसी स्कूल में आरजी तौर पर कर लेती, कभी ट्यूशन कर लेती। उसकी सास को ये मक्कारियां कतई पसंद नहीं थी। अपने चाव से शादी की थी लड़की पसंद करके। अपनी भतीजी थी, पर न जाने क्यों डरती थी कि ये हसीन जादूगरनी बेटे को उल्लू का गोश्त न खिला दे। सलीमा बताती थी कि मेरी खामखां शिकायतें करती रहती हैं। मुझसे भी बड़ी बी ने कुछ आजाद औरतों पर कटी कटी बातें की। मैंने कतई नोटिस नहीं लिया और दिल बहलाने वाली बातें की। भाई, मेरे बच्चे तो आपा ने पाले, बस यही शिकायत थी कि खिला खिला कर मोटा कर दिया। लड़कियां अब फाका करती हैं, बेचारियां दूध मक्खन को तरसती हैं। वह सुंगड़ाए पर जोर देती। बच्चों की परवरिश माँ का फर्ज, घरदारी पर जोर देती। घरदारी बावर्ची और आया मिलकर बहुत अच्छी कर लेते हैं। मैं तो मोटापे के डर से अच्छा खाना पकाने पर बावर्ची को डांटती हूँ। खामखा जस्सा वाला के क्लिनिक जाकर गोश्त छुड़ाना पड़ेगा, सलीमा ने कई बार दबी जबान में कहा। वह बहू को मेरी किस्मत से बचाना चाहती है। एक दिन वह बार बार अपने रंडापे का रोना रो रही थी कि कैसे उन्होंने बेटे की खातिर दूसरा निकाह नहीं किया। अरे वाह, क्यों नहीं किया? माँ बाप की लाज समेटे जवानी राख कर दी। आपने बहुत गलती की। क्या पहले निकाह से आपके बाप की लाज भंग हो गई थी? ऐ खुदा ना करे, वह तो वालदैन के हुक्म की तालीम की। हमने अपनी मर्जी से थोड़े ही खसम ढूंढा। उन्होंने चोट की क्योंकि उन्हें मालूम था कि मैंने खुद खसम ढूंढा था। मगर हमारे रसूल अल्लाह को खरीस्तुल कुबरा ने खुद पैगाम भेजा था। ऐ भाई, वह तो पैगंबर रसूल के अजीम इंसान बंदे, हम गुनहगार उनकी खाके पा के बराबर। मगर तलाक का हक और दूसरे निकाह की इजाजत और आजादी सबसे पहले इस्लाम ने औरत और मर्द दोनों को बराबर दी। खुदा के वास्ते मेरी जान छोड़ो। वह फूट फूट कर रोने लगी और सलीमा की सिट्टी गुम हो गई। वाहिद का चेहरा सुर्ख हो गया और मैं डरी कि कहीं बुढ़िया मुझे पिटवा ना दे। वह फूट फूट कर रो रही थी। मुझे भी अपनी सिट्टी गुम हुई नजर आई। अच्छा भाई, खुदा हाफिज। चाय आपा, चाय तो फिर रश बढ़ जाएगा फिर कभी। और मैं हटी वहां से। मैं भूल भाल गई, मगर एक दिन सलीमा दहाड़ो दहाड़ रोती चली आ रही है। ए भाई, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो क्या इतने दिन बाद मिलने आई हो, इसलिए यह मोहब्बत के आंसू हैं? मेरी जान पर बनी है और आप हंस रही हैं। भाई, मुझे रोना तो आ रहा है, मगर मेरी आंखों के गदूद कुछ खराब है, आंसू नहीं निकलते। यकीन मानो मेरा दिल तो फूट फूट कर रो रहा है। हालांकि मुझे यह भी नहीं मालूम कि तुम रो क्यों रही हो। तो लीजिए, जी खोल कर हंसिए। उन्होंने बुरका दूर फेंका। उनके सिर पर पट्टी बंधी थी। बाहों और पिंडलियों पर बड़े बड़े नील पड़े थे। नाक के पास लंबी सी खरोच थी, जिस पर मर्क्यूरी क्रीम ने और रौनक बढ़ा दी थी। कोई 1.5 साल बाद उन्हें देखकर उलझन हो रही थी। हड्डी पसली तो वह फूट फूट कर रोने लगी। मेरा जी दुख रहा था, जल रहा था, मगर मैं हंसती रही। फिर बोतल से पानी उड़ेल कर थर्मस में बर्फ का टुकड़ा डाला। पानी पीकर उनका जरा सा जी संभला। आपा, मैं तो मर जाऊंगी, अब नहीं सहा जाता। मगर क्या करूं, बच्चों को कैसे छोड़ दूं? वह हिचकियों से रोने लगी। मैंने घंटी बजाई। बावर्ची दरवाजा खोलने के लिए जाग चुका था। मैंने चाय के लिए कहा और बेआदत वह सेव, दालमोठ, काजू वगैरह ले आया। उनका दुखड़ा सुनने को दिल नहीं चाह रहा था कि उन्हें चीन से लाई हुई एल्बम दिखाने लगी। 2 गोलियां एस्प्रो की दी, जो उन्होंने चुपचाप निगल ली। फिर उन्होंने तफसील शुरू की। भाई बोर ना करो, मैं 85 बार इसी किस्म के किस्से सुन चुकी हूँ। मुझे मालूम है कि बड़ी बी ने मेरे हिस्से का गुस्सा उस अहमक बहू पर उतारा होगा, मगर हद हो गई कि 1.5 बरस में गुस्सा उतर नहीं चुका। तुम इतनी बेबस तो नहीं कि बेकसूर जूते खाती हो? ना ही तुम्हारा खसम पहलवान है, तुम पलट कर एक थप्पड़ भी नहीं मार सकती। है, है? आपा, शौहर पर हाथ उठाऊं? तो फिर खामोश पिटती रहो। जन्नत में बड़ा शानदार जमुर्रत का महल मिलेगा। तुम्हारा मियाँ हूरों के चक्कर में तुम्हारी खिदमत का मोहताज नहीं होगा। हाँ, बुढ़िया जो तुमसे पहले ही विराज रही होगी, शायद टेढ़ी खीर साबित हो। खुदा के लिए, ऐसी कुफ्र की बातें तुम मुझे गड़बड़ा कर ऊटपटांग की बातें कहलवा रही हो। अच्छा, खुदा हाफिज, मुझे बर्थडे पार्टी में जाना है। वह खामोश मुझे घूरती रही, फिर लंगड़ाती हुई चल दी। ये कमबख्त बूढ़ी सासे भी अजीब तमाशा होती हैं। बड़े अरमान से बीवियों लड़कियों में से चांद का टुकड़ा ढूंढ कर उसे बहू बना लेती है। बेटा बेटी का गुलाम बन जाता है, जब देखो उसके कलेजे में छुपा हुआ है। माँ तो जैसे कोई चीज ही नहीं है। क्या अजब जो बेटे के कान भरे और वह उसे सड़क पर फेंक दे। बुढ़िया दर दर की ठोकरे खाएगी, किसकी जूतियां संभालेगी। हाँ, खसम को रिझाने के लिए सरे शाम की 16 सिंगार शुरू हो जाते हैं। आया और चहेती के कलेजे में घुसा, जैसे माँ तो कुछ है ही नहीं। अरे 9 महीने पेट में रखा, खूने जिगर पिलाकर पाला, खुद गीले में सोई, बच्चे को छाती पर सुलाया और सपूत ने यह अंजाम दिया कि माँ से 2 बातों की फुर्सत नहीं। एक के बाद दूसरा अभी नहीं, दूसरे के बाद तीसरा कभी नहीं। दुश्मनों के मुंह में खाक, जो उनसे दूर बच्चों को कुछ हो जाए तो गोद खाली, खानदान ही खत्म। यह हरबा निशाने पर बैठा और मियाँ बीवी में खटपट शुरू हो गई। जाहिर है अम्मा जान ने तो बेटे की तरफदारी की। बीवी अगर बच्चा रोक तगड़ में लगाती है तो यार धींगड़े भी दिलेरी से पालेगी। मर्द तो मुए कीचड़ में मुंह डालें तो कौन सी नई बात होगी। कभी यार दोस्त घसीट ले जाएं तो जाना ही सचता है, मगर बीवी जो हरामियों की फौज जुटा दे तो बस भड़क उठे और चली 4 चोट की मार। सलीमा ने लूप क्या लगवाया कि गले का फंदा बन गया। वह बोझ समझ कर मेरे सिर पर नाजल। मैंने धक्के तो नहीं दिए, हाँ जहनी धक्के देकर चलता किया। मुझे ख्याल भी नहीं आया कि सलीमा ने आना जाना बंद कर दिया। बेख्याली चली जा रही थी कि पीछे से तरोताजा गोबर के ढेर में पैर पड़ा। बाखुदा, टैक्सी वाले को आवाज दी। एक नजर डालकर फर्राटे भरता यह जा वह जा। लोग मेरी दुर्गत पर इत्मीनान से मुस्कुरा रहे थे। चार कदम पर सलीमा का घर देखकर जान में जान आई। सलीमा भागती हुई कोठे से उतरी और रोते हुए मुझसे लिपट गई। मुझे तख्त पर बैठा कर बच्ची से बोली, पापा से कहो मेरे गुसल वाला गर्म पानी तसले में ले आए, और लपक कर अलगनी से तौलिया उतार लाई। मैं नाना करती रही, मगर उसने पहले लोटे की धार से पैर साफ किया, चप्पल निकाल कर नीचे रख दी और मेरा पैर पोंछ कर पाउडर छिड़कने लगी। भाई, ये मेरी इतनी पाली पोस किस खुशी में हो रही है? जीती रहे वह भैंस। भैंस? कौन सी भैंस? वही जिसके गोबर ने आपको मेरे घर में आने पर मजबूर किया। कहाँ गायब हो गई थी? जन्नत की सैर को गई थी? कश्मीर तो आप गए साल गई थी, फिर साइबेरिया गई थी। हैं किसी कसूर में? वहाँ तो नमक की खानों में मजदूर बेड़ियों में जकड़ कर फेंक दिए जाते हैं, जहाँ से उनकी हड्डियाँ ही निकलती हैं। बर्फ के तूदे, वह जमाने लद गए। मैं तो गर्मियों में गई थी। कश्मीर से हजार गुना बड़ी जन्नत, वही आसमान से बातें करते चिनार और बांसों के झुंड, 4,000 से ज्यादा किलोमीटर लंबी मीठे पानी की झील, ऐसी शफाफ कि तह में नाचती सुहाए शहीर भी दिखाई दे। वैसे भी शगुफ्तों के बोझ से झूलते न जाने कौन से फूल नाम भी नहीं याद डायरी में लिखे हैं। और ओए हुस्न, उफ, मेरी तो आंखें चकाचौंध हो गई। इतने हसीन बच्चे जैसे कश्मीर के, बस उसमें से गरीबी निकाल दो। अरे बेबी, पापा से कहना थोड़े से पापड़ और पकवाए। सलीमा, ये तुझे क्या हो गया? खसम पर हुक्म सादर कर रही है, जहन्नुम में जाएगी। अरे मर गए जहन्नुम में भेजने वाले। सासू जी, खुदा उनका साया हमारे सिरों पर कायम रखे। उधर पिछले कमरे में बच्चियों को कुरान पढ़ाने लगी हैं। वाकई बेकार बैठी ऊब जाती थी। तो तुम्हारी जान खाती थी? अब तो वह मेरी जान है। पूछिए यह इनकलाब आया कैसे? बताऊंगी, पहले चाय हो जाए। वाहिद मियां चाय की ट्रे ला रहे थे, हाथ के धुले कपड़े और पैर में लंग, चेहरे पर भयानक शर्मिंदगी, बालों में सफेद लटे। मैं सन्नाटे में रह गई। वाहिद मियां, आप चाय नहीं पियेंगे? मैंने टोका। जी, मैं उधर ही पी लूंगा, हांडी में प्याज लाल हो रही है, जल जाएगी। वह लंगड़ाते डग भरते चल दिए। मैंने सलीमा की तरफ देखा, वह बड़े नाज से मुस्कुरा रही थी। मैंने उसका हाथ झटक कर उठने की धमकी दी, आपा चाय? भाड़ में जाए तुम्हारी चाय और चूल्हे में जाओ तुम। आप ही ने तो कहा था। अगर मैंने यही कहा था जो मैं आज देख रही हूँ, तो मैंने झक मारी थी। मैं किसी इंसान की, ख्वाह वह मर्द हो या औरत, ऐसी जिल्लत नहीं देख सकती। मैंने तुम्हें जीने की राय दी थी, किसी को कत्ल करने का मशवरा नहीं दिया था। हुआ क्या? फिर सलीमा ने बताया कि एक दिन वे उसे पीकर मार रहे थे, तो उस पर भी जुनून सवार हो गया। उसने जो धक्का दिया तो वाहिद चित गिरे, फिर दोनों में गुत्थम गुत्था हो गई और सलीमा बिल्कुल पागल हो गई। उसने उनकी पिंडली में ऐसे दांत गड़ाए कि खून का फव्वारा छूटा। कोई ऐसी राख कट गई थी कि खून रोके ना रुके। वाहिद बेहोश। अम्मा की चिल्ली घोर सुनकर मोहल्ले वाले आ गए, उन्हें अस्पताल ले गए, मगर खून किसी तरह बंद ना होता था। कितनी ही बोतलें चढ़ाई, महीनों खटिया गोड़ी, सारा जमा जत्था गया, जो जमीन का टुकड़ा था गिरवी हो गया। स्टील के कारखाने में जो नौकरी थी वह भी गई, कि उनका रिकॉर्ड खराब था। वार्निंग पर वार्निंग मिल चुकी थी, ऊपर से अफसर पर नशे में हाथ छोड़ बैठे, प्रोविडेंट फंड पर पहले ही हाथ डाल चुके थे, बोतल की आदत ने नीम वहशी बना दिया। सलीमा को स्कूल में फिर पुरानी जगह मिल गई। अब खुदा के करम से इंटर तक हो गया है और उस उर्दू स्कूल की वह प्रिंसिपल है। 1200 तनख्वाह, ऊपर से अलाउंस, अच्छी गुजर हो जाती है। पैर का लंग नहीं गया? कहते हैं विलायत में ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो शायद ठीक हो जाए। जहरबाद हो गया था। जान ही बच गई तो खुदा की मेहरबानी थी कि वह बड़ा रहम वाला है। अम्मा की तो कमर टूट गई, मुझे सीने से लगाकर बहुत रोती थी। मैंने उनके पैर पकड़ लिए, उनके सिवाय मेरा कौन है? बड़े चाव से मुझे मांगा था, फिर न जाने क्या हो गया उन्हें। और चुड़ैल, तूने खसम को बावर्ची बना दिया, फटकार है तेरी सूरत पर। लो, मैंने चाय पी ली और वाहिद के तले हुए पापड़ भी जरूर। अब तुम गारत हो जाओ, और वाहिद को मेरे पास भेज दो। आप हद करती हैं आपा, अब उन्हें मेरे खिलाफ भड़काओगी। उनसे क्या कहना है मुझे कहिए ना। तुम्हारी बला से मुझे कुछ भी कहना है। तुम हमारी बातें सेंध करती रहना, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तो भरोसा, पर आप ऐसे जन्नाटे से बात करती हैं कि इंसान मरगूब हो जाता है। गधी, तुम्हें यकीन है कि मैं उन्हें तेरे खिलाफ भड़काऊंगी? मैं वाकई बददिल हो गई। नहीं आपा जान, ठीक है, आप भड़का कर भी देख लीजिए, यह इम्तिहान भी हो जाए तो अच्छा है। यह बात हुई ना कुछ? वह चली गई तो वाहिद मियाँ लंगड़ाते हुए आए। जी क्या हुक्म है? बदतमीजी ना करो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात में सलाह लेना है। मैंने उन्हें बोलने ही नहीं दिया। मुझे इनकम टैक्स रिटर्न देना है और मेरी कुछ समझ में नहीं आता। मेरी मकानदारनी मुझे बोर कर रही है, फ्लैट छोड़ने को कहती है। पक्के स्टाम्प पर 250 किराया लिखवाया था और उसके गुर्गे मुझे परेशान करके किराया बढ़वाए जा रहे हैं। अभी और बढ़ाया है, 500 कर दिया। नीचे जिस बोर्ड पर फ्लैट में रहने वालों के नाम लिखे हैं, वहाँ अपने नाम का बोर्ड जड़ दिया है। उसके आदमी वक्त बेवक्त उससे मिलने आते हैं। हजार बार कह दिया वह यहाँ नहीं रहती। वह कहाँ रहती है कोई नहीं जानता। कभी सुना है हांगकांग में मुस्तकिल व्यापार है? कभी पाकिस्तान में सेटल होने की इत्तला आती है? जो उस पते पर उसे पूछने आते हैं, वह खामखा मेरा वक्त बर्बाद करते हैं। मैं अक्सर घर में तन्हा होती हूँ। अब मैंने गोरखे से कह दिया है कि मुझसे बगैर पूछे किसी को मेरे पास ना आने दो, तो मेरे अपनों को इस रोकथाम से बड़ा बुरा लगता है। कौन बदमाश है वे, मुझे बताइए। सालों को वह एकदम घबरा गए। यह गाली तुम मेरे हिसाब में जोड़ दो, शुक्रिया। वह मुस्कुराने लगे। इसके अलावा मुझे इनकम टैक्स भरना नहीं आता, बहुत ज्यादा काम नहीं है, मगर जो बात समझने से जी घबराता हो वह बड़ी मुश्किल, मेरा मतलब है बड़ी लगती है। तो आप उनसे कहिएगा। वे कुछ सहम कर बोले। हाँ, मैंने पहले ही कह दिया है कि मुझे किसी की मदद चाहिए। अभी तुम्हारे बारे में भी पूछ लूंगी कि कौन सा वक्त ठीक रहेगा। सुबह शाम का खाना एक ही वक्त हो जाए। रोटी कभी होटल से भी ले आता हूँ, कभी खुद डाल लेता हूँ। अब ऐसा करो, कल सुबह नाश्ते के वक्त काम खत्म कर लो और बस सब कागजात देख लो। वाहिद दूसरे दिन 8 बजे आ गए। मैं सोकर भी नहीं उठी थी, मैंने फाइल निकलवा दी। वह बैठे देखते रहे। खाने पर इनकार करने के पहले मैंने उनके लिए भी प्लेट लगाने को कह दिया। बड़े ही तकल्लुफ से खा रहे थे। 2-3 दिन में उन्होंने काम खत्म कर दिया, था ही कितना। कई बार मैंने उन्हें किताबों की अलमारियों में झांकते देखा। लाजवाब कलेक्शन है। मेरा नहीं, शाहिद साहब को किताबें जमा करने का जुनून था, पढ़ने की फुर्सत मुझे ज्यादा थी। तुम्हें कोई किताब चाहिए तो बेतकल्लुफ ले जाओ। यह मगर किताबों की सबसे बड़ी इज्जत और हिफाजत पढ़ने से ही होती है। वह बार बार खाने के कमरे में लगी हुई घड़ी देखने उठते थे। शायद किताबों के अलावा ट्रांजिस्टर और घड़ियां जमा करने का भी शौक था। 10-12 बहुत कीमती घड़ियां छोड़ गए। मैंने बांट दी कि मर्दाना घड़ियां लड़कियों के काम की नहीं थी। अब भी 2-4 घड़ियां थी। मैंने उन्हें एक निकाल कर दी। वह घबरा गए। नहीं नहीं, बहुत कीमती है। मैंने कई तो बांट दी, शाहिद साहब के बाद बेकार पड़ी थी। आप इस्तेमाल करेंगे मुझे खुशी होगी। वह चुप हो गए। मेरा काम खत्म हो रहा था, मगर मेरी भांजी सलीमा को मदद की जरूरत थी। इनकम टैक्स के चक्कर में परेशान थी। देखते ही देखते उनके पास इतना काम हो गया था कि फुर्सत ही नहीं मिलती थी। वह 1500 की घड़ी कबूल करने के बाद कुछ लेने को तैयार नहीं हुए। तभी जबान से बोले, अगर फोन लग जाए तो। फोन लग गया। फिर ऐसा हुआ कि पिछले इतवार को टिन्नो की सालगिरह थी। मैं गई तो ऐसा लगा किसी अजनबी घर में भूले से आ गई हूँ। भड़क कर कपड़े पहने बच्चे उधम मचाए हुए थे। लंबा चौड़ा केक चौके पर सजा था। बड़े भी कासनी चूड़ीदार और पत्ती के काम का सफेद बुरका कुर्ता दुपट्टा पहने चौक पर डटी हुई थी। उठकर मुझसे खूब गले मिली। तब बेअख्तियार मेरे दिल ने सोचा, अगर फिरदौस बर रुए जमी अस्त, हमी अस्त व हमी अस्त व हमी अस्त।
ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर।
ऑडियो पिटारा, सुनना जरूरी है।